नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं
जी।
हमारे पास उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्बोधन है जिसका शीर्षक है पूजा उपासना के लाभ। और इसमें एक सवाल उठाया गया है जो शायद हम सबके मन में आता है।
हाँ, बिल्कुल।
कि क्या पूजा उपासना का जो सही तरीका है वो हमें सचमुच वो सिद्धियां वो लाभ दिला सकता है जिनका जिक्र हम पुराने ग्रंथों में पढ़ते हैं?
देखिए, पूज्य गुरुदेव का उत्तर तो इसमें बिल्कुल साफ है, हाँ दिला सकता है, बिल्कुल मिल सकता है।
अच्छा,
लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, तरीका एकदम सही होना चाहिए।
और यहीं पे मतलब पारंपरिक सोच से उनका नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है।
तो ये सही तरीका ये क्या है? क्योंकि आमतौर पे तो लोग पूजा पाठ जो कर्मकांड होते हैं उसी को सब कुछ मान लेते हैं। क्या पूजा गुरुदेव भी उसी की बात कर रहे थे?
नहीं नहीं, यहीं पर वो एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। उनके लिए सही तरीका सिर्फ बाहरी कर्मकांड पूजा पाठ नहीं है, तो फिर क्या है?
ये असल में अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम धंधे में, उसमें ईमानदारी लाना, अनुशासन लाना, एक तरह से तप और साधना को जीवन में उतारना है।
तप और साधना काम धंधे में?
हाँ।
उन्होंने तो जैसे राम नाम का प्रयोग किया तो वो किसी बाहरी शक्ति को खुश करने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को सुधारने के लिए किया।
खुद को सुधारने के लिए राम नाम, ये कैसे? ये थोड़ा अलग लग रहा है।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसकी तुलना की जैसे साबुन से।
हाँ।
साबुन मैल साफ करता है ना।
हाँ हाँ।
या झाड़ू है वो गंदगी हटाती है। धोबी का वो पत्थर होता है जिससे वो कपड़ों को पटक पटक कर साफ करता है
जी।
या फिर वो रुई धुनने वाला धुनिया, वो रुई को कैसे धुनक धुनक कर साफ कर देता है।
अच्छा,
तो उनका कहना था कि मैंने राम नाम को बिल्कुल इसी तरह अपने ऊपर इस्तेमाल किया, अपनी कमियों को पीटने के लिए, धुनकने के लिए, साफ करने के लिए। ये भगवान की खुशामद करके कुछ मांगना नहीं हुआ, ये तो खुद को निर्मल बनाना हुआ। यानी फोकस बाहर से ज्यादा अपने अंदर की शुद्धि पर है।
बिल्कुल।
लेकिन फिर वो प्रार्थना याचना, लोग तो अक्सर मुश्किलों में भगवान से मदद मांगते हैं, क्या पूज्य गुरुदेव इसको गलत मानते थे?
गलत नहीं, पर हाँ वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने या मतलब एक भिखमंगे की तरह याचना करने के सख्त खिलाफ थे।
सख्त खिलाफ?
हाँ।
उनका मानना था कि अगर मांगना ही है, याचना करनी ही है, तो अपनी आत्मा से करो, अपने मन से करो, अपने पुरुषार्थ से करो।
अपनी आत्मा से?
हाँ, आत्मा जो शक्ति का इतना बड़ा स्रोत है, उससे पूछो कि भाई तुम मुझे अशक्त क्यों बनाए हुए हो, मुझे भटका क्यों रही हो। ये ईश्वर से भीख मांगने जैसा नहीं है, ये अपने अंदर की शक्ति को जगाने का आह्वान है।
ये तो बहुत ही सशक्त मतलब आत्मसम्मान पर आधारित नजरिया है।
बिल्कुल। क्या इसीलिए वो कहते थे कि मैं लड़ूंगा तो अपनी आत्मा से लड़ूंगा, मैं भीख मांगूंगा तो अपनी आत्मा से मांगूंगा?
हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये अपनी इज्जत, अपनी गरिमा बनाए रखने का सवाल था। वो कहते थे कि भाई मैं भगवान के सामने एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह हूँ और भगवान ने भी मेरी इज्जत रखी है।
अच्छा।
उनका मानना था कि भगवान की शान भी तो इसी में है कि उनका बच्चा मतलब इंसान वो दीनहीन मन के ना जिए बल्कि शान से जिए।
शान से जिए।
हाँ, ये साबित करना तो इंसान का कर्तव्य है कि उसे मनुष्य का जीवन देकर भगवान ने कोई गलती नहीं की। ये सोच उस गिड़गिड़ाने वाले रवैये से बिल्कुल अलग है।
और इसी गरिमा, इसी आंतरिक शक्ति के बल पर उन्होंने वो बड़े बड़े काम भी किए, जैसे वो विशाल साहित्य का सृजन।
जी हाँ, वो बताते भी हैं कि उन्हें भगवान से प्रेरणा मिली कि भाई साहित्य के जरिए लोगों के विचार बदलो। अब उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था, न पैसा, न लोग, न कोई और मदद,
कुछ भी नहीं।
हाँ, लेकिन उन्होंने बाहरी साधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आत्मा की शक्ति को जगाया, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किया, और नतीजा तो हम सब जानते हैं, इतना विशाल साहित्य भंडार।
हाँ सच में,
जिसने करोड़ों लोगों के सोचने का ढंग बदला, उन्हें जीवन जीने का एक सकारात्मक नजरिया दिया।
ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है कि बिना साधनों के भी इतना बड़ा असर डाला जा सकता है।
बिल्कुल।
क्या वो इसे अपना कोई व्यक्तिगत चमत्कार मानते थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसे विशुद्ध आध्यात्मिकता का असर मानते थे, सही रास्ते पर चलने का नतीजा मानते थे। उनका पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता का सही रास्ता पकड़ ले,
हाँ,
तो वो भी वही लाभ, वही सामर्थ्य पा सकता है, चाहे उसके पास दुनिया के साधन हो या ना हो। उनका साफ कहना था कि शक्ति किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है।
आपने उनके भविष्य के काम के बारे में भी कुछ कहा था, सूक्ष्म वाणी का प्रयोग, उसका क्या मतलब है?
हाँ, वो कहते थे कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी उनका काम रुकेगा नहीं। वो अब स्थूल वाणी से मतलब जैसे हम आप बोल रहे हैं वैसे नहीं, बल्कि सूक्ष्म वाणी से जिसे परा पश्यंती मध्यमा कहते हैं, मतलब विचारों, भावनाओं, प्रेरणाओं के और गहरे स्तर पर काम करके लोगों के दिलों और दिमागों को झकझोरते रहेंगे।
यानी वो काम अभी भी जारी है
उनके अनुसार। हाँ, ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति शरीर पर निर्भर नहीं है, वो तो लगातार काम करती रहती है। ये उनके काम की निरंतरता का संकेत है।
तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, पूज्य गुरुदेव के अनुसार पूजा उपासना का असली मतलब क्या हुआ?
देखिए, सार यही है, मोटी मोटी तीन बातें साफ होती हैं। पहली कि सच्ची पूजा उपासना बाहरी कर्मकांड या रस्मों में नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में आत्मसुधार, अनुशासन और ईमानदारी, मतलब तप और साधना में है।
ठीक है।
दूसरी बात, ईश्वर के सामने भी अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। गिड़गिड़ाना या भीख मांगना वो आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता नहीं है। और तीसरी कि असली शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारी आत्मा के अंदर ही है। और उसे जगाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि सही दिशा में पुरुषार्थ की, मतलब सही कोशिश की जरूरत है।
सही कहा। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए शायद एक विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाते हैं।
जी बिल्कुल।
कि अगर सच्ची आध्यात्मिक शक्ति, जैसा पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया और सिखाया, वो बाहरी कर्मकांड या सिर्फ मांगने से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है, अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपने प्रयास से आती है, तो ये नजरिया हमारी पूजा पद्धति को तो बदलेगा ही, साथ ही जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है।